सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार प्यारे मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। गुरु सरपाई अल्लाह लहन दहन बदन ये तन ये मन तेरा निखार दूं, लहन दहन बदन ये तन ये मन तेरा निखार दूं, ये महरुमा ये महकसा मैं उम्मती पे वार दूं, यही है कौल मुस्तफा, यही है कौल मुस्तफा, मैं आ तुझे निखार दूं, तू दिल से देख सदा, तू दिल से देख सदा, तुम्हें हजार बार दूं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार प्यारे मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। आखिरी शेर तब जाऊंगा। गुलाब रात रानी बेल हो करो तरी समर, गुलाब रात रानी बेल हो करो तरी समर, मलक फलक चमक दमक ये शम्स और ये कमर, नबी के नूर से बने, नबी के नूर से बने सजर हजर ये बैरोबर, बसर तो वो जरूर है, बसर तो वो जरूर है, मगर है अफजलुल बसर, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार प्यारे मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल नबी करीम वालिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महतरम हज़रात, अजीज बहनों, मैंने बयान शुरू करने से पहले हम आप कैसा हम सुनियाँ का दस्तूर है, एक मरतबा दर्जी शरीर जरूर पढ़ लें। मैंने बात शुरू करने से पहले, चूँकि यहाँ ये सूफी सेंटर की तरफ से एक प्रोग्राम मुनासिब है, तो इस वास्ते तो सूफी हजरात क्या हैं, औलिया इकराम क्या हैं, इसकी थोड़ी तफसील मुझे अर्ज़ करना पड़ता है, तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा। और ये बात अर्ज़ करने से पहले, क्योंकि ये सूफीज़म जो है और औलिया अल्लाह जो बनना है, वो इस इंसान ही को तो बनना है, तो इंसान को जब बनना है तो आमतौर से गुफा ये जो सब्जेक्ट पर बात करता है, उस सब्जेक्ट की तफसील पहले करता है, तो वह सब्जेक्ट पर जो है बयान करता है। तो लिहाजा मैं मुनासिब समझता हूँ कि पहले इंसान पर मैं बात करूँ, मैं इंसान पर पहले बात करूँ, फिर आगे की तरफ मैं चलूँ। इंसान क्या है? इंसान जो है दो चीज़ों का मरकब है, एक इसमें इंसानी है, एक रूह इंसानी है, ये दोनों को मिला तो एक इंसान बनता है। अगर इंसान से आप रूह निकाल लें तो उसे आप इंसान नहीं कहेंगे। अगर आप ये कहें कि हमारे वालिद साहब यहाँ सो रहे हैं तो आदमी नहीं मानेंगे, उनकी लाश है, उनकी मैयत है, वो नहीं, तो चले गए, तो चले गए, मुंतकिल हो गए। इंतकाल करना एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल होने को इंतकाल करना कहते हैं, जैसे हम घर बदलते हैं, ऐसा इंतकाल है। और अगर दूसरा हिस्सा लीजिए कि अगर इंसान का जिस्म है वो हट गया और रूह बाकी है, तो आप इस रूह को देख नहीं सकेंगे, बोलो भी फर्श आपके सामने आपके दादा साहब की रूह आ गई तो आप किस नाते पता नहीं बेहोश भी हो जाए, ये बोला। तो इंसान का जिस्म और इंसान की रूह दोनों मिलते हैं तो इंसान बनता है, तो इंसान बनता है। अब इसमें अहम कौन सी है और कम दर्जे वाली कौन सी ये देखना पड़ेगा। इसमें रूह बहुत अहम है और इंसान का जिस्म बेशक अहम है, इनकार नहीं है, लेकिन उसका मुकाबला रूह के साथ हो ही नहीं सकता। जैसे सत्रह अगर दरिया दरिया का मुकाबला सत्रह से हो ही नहीं सकता, सत्रह दरिया कहाँ सत्रह कहाँ, तो जिस्म के निशान जैसे दरिया के है जिसको सत्रह के हैं जिस्म के निशान, जैसे कांटा छूट जाता है वो उल्टी करके बैठ जाता है, जिस्म के सारे आधा इस कांटे के दर्द की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। लिखने वाला लिख नहीं सकता, कलम चलता नहीं, दिमाग से जो है मजमून आता नहीं, इसलिए कि पढ़ना कांटा छूटा। तो इस वास्ते जो है इंसान का एक जिस्म है और इंसान की रूह क्या कहे उसकी ताकत का मुकाबला जिस्म क्या कर सकता है। तो बहरहाल एक दावा हमने किया, दावे के साथ कम से कम एक दलील देना जरूरी है ताकि बात समझ में आए और उसूल और जाता हमने बयान किया वो बात वाजह हो जाए, खुल जाए। इस बात अगर आप दोनों का मुकाबला करना चाहते हैं तो कोई चीज़ से मुकाबला कीजिए, या तो रफ्तार से मुकाबला कीजिए, या कुव्वत से मुकाबला कीजिए दोनों का, या उमंग के लिबास से मुकाबला कीजिए। तो मेरे ख्याल से उमंग का मुकाबला हम कर लें तो बात ज़्यादा खुल कर सामने आए। उमंग का मुकाबला कीजिए, इंसान का जिस्म की उम्र क्या है? पहले ज़माने में लोग एक साल तक सौ साल तक किया करते थे और आजकल जो है इंसान की ज़िंदगी का एवरेज 50-60 साल हो गया है, बल्कि नौजवान भी मर गया करता है, बल्कि पैदा बच्चा पैदा होकर भी मर गया करता है। तो ये इंसान की जो है जिस्म की जो है ये उम्र, इंसान की रूह की उम्र बताइए। इंसान की रूह की उम्र मैं नहीं बोल रहा हूँ, कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कैसे आप इन्हें उस दिन इन्हें तमाम अरवाह को अल्लाह ताला ने जमा किया और पूछा अल्लाह तो देगा कि तुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो तमाम अरवाह ने जवाब दिया जिसमें हम और आप थे और पहले जो चले गए वो थे, जो आने वाले ही वो थे, सब मौजूद थे, सब सब अरवाह ने जवाब दिया कालू बोला बेशक तो हमारा रब। तो अल्लाह ताला ने जवाब तो हाँ दे दिया, लेकिन हमेशा एक इंसान जो सही है और गलत है ये मालूम करने के लिए इंसान को एक टेस्ट में से गुजारा जाता है, दुनिया का जाता है, हर में जाता है, घर में काम वाली आती है उसे आठवा रात रख के देखती है चोरी करती है कि नहीं करती, बात मानती है कि नहीं मानती, कोई बात करे तो उल्टा जवाब देती है कि नहीं जवाब देती, ढंग सलीका कैसे है, पहले कुछ काम करके तजुर्बा है कि नहीं है। अरे माँ मुझे एक नौकरानी के लिए क्या टेस्टिंग आप चला रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई दावा करे कि मैं तुझे जानता हूँ तुझे मानता हूँ तो फिर उसे ऐसे ही छोड़ देगा, आजमाइश नहीं करेगा, आजमाइश में से गुजार। अल्लाह ताला ने गफलत का पर्दा डाला और आजमाइश में से गुजारा उसे इंसान को, क्या है तंगो तारीख जगह से उसे दुनिया में भेजा और तंगो तारीख जगह इंसान की माता पे गफलत का पर्दा डाला, पहले का कुछ याद नहीं, और जब दुनिया में भेजा और ऐसे ही जो है इम्तिहान ले ले तो इम्तिहान की तकमील नहीं हुई। तो कोई इंसान समझाने वाला चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 124,000 पैगंबरों को भेजा, मामूली तैयार 124,000 इतने पैगंबरों को मुख्तलिफ मकाम में मुख्तलिफ मुल्कों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, भेज के वो भलाई की तरफ बुलाते थे। अब आजमाइश उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब दोनों तरफ खींचे तब देखेंगे किधर जाता है। तो इसलिए अल्लाह ने शैतान को पैदा किया और उसे बुराई की तरफ खींचने का जो है काम दिया, लेकिन शैतान थोड़ा तारीफ करने के काबिल है, यानी आप गुस्सा मत कीजिए कि मैं शैतान की तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ के जो है लायक है कि नबी बदलते रहे, ये 124,000 नबी बदले लेकिन शैतान नहीं बदला। एक लाख चौबीस हजार नबी बदल गए लेकिन हर नबी के मुकाबले वही शैतान था, और अमल के अंदर इस्तेहामत को बहुत बड़ा दर्जा है, इन्हें जम करके अमल करना, हदीसे पाक में गया था थोड़ा अमल करो लेकिन जम करके करो, करते ही करो बुरा ना। तो इस्तेहामत की सिफत शैतान में बहुत है, बहुत है, वो बुराई की तरफ है, लेकिन सिफत का इनकार आप नहीं कर सकते। सिफत को गलत इस्तेमाल कर रहा है पढ़ाई की तरह, लेकिन सिफत उसकी क्या है, इस्तखामत है। अब इस्तखामत का मैं आपको जरा मंजर दिखाऊँ। इस्तखामत इन्हें तूफान आता है, बारिश मौसलाधार आता है अब छोटा सा खास होती है, बारिश आया दब जाती है, बारिश जाने का खड़ी हो जाती है, एकदम इतना सा पानी आया दब गई खड़ी हो। लेकिन यह खतरा जब गिरता है, खतरा इस्तखामत के साथ जब गिरता है, पत्थर में सुराख कर जाता है, पत्थर में गड़ा बना होता है। तो इस्तखामत की सिफत बहुत प्यारी है, और शैतान में इस्तखामत है, और शैतान ने सबका मुकाबला किया है। तो दोनों तरफ दोनों खींच गए। अब देखें इंसान किधर जाता है। अगर इंसान अपने रब की तरफ गया वाकई वो कामयाब है और इम्तिहान में पास, अगर नहीं तो इम्तिहान में फेल है और सजा का मुर्तकब है। बात खत्म हो गई। अब जो बात मुझे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें दीन दिया, हमें जो दीन दिया है उसके भी दो हिस्से हैं। रूह नजर नहीं आती, जिस्म नजर आता है। लोग इस बात के धोखे में मुब्तला हैं कि जिस्म कर रहा क्या, दिमाग का आदमी है सर, क्या पैमान आदमी है सर, मार दिया सर, यानी सारा उसके ऊपर की चीज़ों को देख रहे, अंदर को नहीं देख रहा है, दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा। तो अंदर वाला नहीं दिख रहा है, तो इस मुकाले में है कि वो जो है इंसान का जिस्म कर रहा है, बिल्कुल नहीं, इन्हें सारा मसला दम में है। ये दम का खेल निराला है, ये दम का खेल निराला है। आ दम मिट्टी का पतला है, दम आया तो आदम उठ के बैठ गए, और फिर जब क्या दम होगा ना तो इंसान सो जाएगा। आँख है देख नहीं सकेगा, हाथ है पटक नहीं सकेगा, पाँव है चल नहीं सकेगा, दिल है धड़क नहीं सकेगा, कुछ नहीं होगा जब ये क्या दम हो जाएगा। तो असल जो है रूह है, तो रूह को जो है जब से रूह हमारी है, और फिर पता नहीं कितने साल हो गए, हिसाब किताब लगाना मुश्किल है, और फिर उसके बाद जब जिस्म में आई तो जिस्म की जितनी मदद है रहेगा, फिर उसके बाद जब रूह नींद लेगी तो फिर ये क़यामत तक एक दूसरा जो है उनकी जो है इनका मकाम है वहाँ ये रूह रहेगी, ये रूह रहेगी। फिर वो कितनी मदद है क़यामत कब आएगी, ये क़यामत कब आएगी, अनकरीब आने वाली है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़यामत अनकरीब आएगी। उसका अनकरीब हमारे पास बक्सों में सदियों हजार साल है आई, फिर वो मुद्दत, फिर उसके बाद क़यामत कितने दिन होगी, वहाँ का एक दिन कितना लंबा होगा यहाँ का मुकाबला का, फिर वो, फिर उसके बाद अब्दुल अबाद यानी एटर्निटी जिसे बोलते हैं, नगर रहेंगे या तो जन्नत में रहेंगे या तो दौलत में, या दौलत की सदा भगत कर ईमान वाले जन्नत में आए। ये सब का ग्रैंड टोटल बदला तो तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो जाएगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इसका टोटल लगा। तो आपको अंदाजा हो गया कि रूह और जिस्म का मसला मिल जाए। फिर उसके बाद आगे की तरफ चलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें दीन अता फरमाया उसके भी दो हिस्से, ये हिस्सा वो है अपने जिस्म की मुनासिबत से दीन अता फरमाया, तो उसके भी दो हिस्से हैं। ये एक हिस्सा है जो दिखता है यानी अमल, जो दिखता है, नमाज पढ़ता है इंसान को देख सकते हैं, हज करते हैं इंसान को देख सकते हैं, ज़कात देते हैं इंसान को देख सकते हैं, अमल आंख से दिखता है, बेशक अमल दबोगे है इनकार नहीं है उसका। लेकिन ईमान जो दिखता नहीं है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान जो दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, अल्लाह दिखता नहीं, हर जगह मौजूद है दिखता नहीं, हर जगह दिखता नहीं, दिखता नहीं। तो इस वास्ते अल्लाह दिखता नहीं है लेकिन उसका मतलब जानना ज़रूरी है। जो एक कुत्ता है, कुत्ते पर उसकी टांग पकड़कर मालिक खींचता है, काटता नहीं, दुम पकड़कर खींचता है, काटता नहीं, जानता है कि मालिक है, और दूसरा आता है तो वो गिरता है उसके पर, काटने जाता है उसको। तो कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, बिल्ली भी अपने मालिक को पहचानती है। मालिक जब आता है तो अतरा से ब्यों मो इन्हें जिसम की अतरा दुम लगा कर खींचती रहती है नौबत से। लेकिन जब दूसरा आता है पकड़ में आता है, खा जाती है, मिलती नहीं आती, तो पता चला, नतीजा यह निकला कि जानवर अपने मालिक को पहचानता है। अगर इंसान जो तमाम मखलूसात में अफजल अफजल है, सब में बड़ा है, अगर ये इंसान अपने पैदा करने वाले को ना पहचाने तो इससे ज्यादा दुनिया में बेवकूफ और कौन हो सकता है? बोले चाहिए न सिर्फ बेवकूफ बल्कि सबसे ज्यादा जालिम और कौन हो सकता है? पैदा करने वाले बाप को ना पहचाने तो ऐसे बेटे को आप क्या कहेंगे? तो पैदा करने वाले सालिह को ना पहचाने तो इससे ज्यादा जुल्म की और क्या बात दुनिया में हो सकती है? तो हमारे पास दो चीजें अल्लाह ताला ने दी, फिर इतना ही नहीं है कि जन्नत तो दो तक में अल्लाह ले जाएगा, उसकी तफसील क्या है पहुंच जाना। हर नबी सुन करके बताए, हमारे नबी चेक करके बताए, जन्नत तो दो तक का ही नहीं मुशाहिदा किया। जब कहीं उम्मत को तफसीलात बताई और अल्लाह ताला के फुर्कत की अजीब है कि जन्नत की और दोज़ख की चीजों का जो नमूना दुनिया में रखा ताकि इंसान पहचान सके। बिच्छू काटेगा, अगर बिच्छू का नक्शा दुनिया में ना आता तो क्या समझते कि बिच्छू क्या है? लेकिन जिस बिच्छू में उस बच्चों जमीन आसमान का फर्क, जैसे ये साथ फरमाया, यानी मैं 70 माँ की मोहब्बत करता बंदों से, माँ की मोहब्बत हगे सौम ने माना, इसे हगे जमाने में मानी गई माँ की मोहब्बत, कि माँ वाकई माँ, अगर माँ ना होती बच्चा एक दिन भी बाप के पास ना पलता, नहीं होने की बात है, होने की बात करके देख लो, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को नहीं, हाँ तजुर्बा करके देख लो मेरी बात का। तो अल्लाह को बोलने करते हैं कि तो इस बात से अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को दुनिया में जो है उसका नमूना रख दिया, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत का नमूना माँ में रखा, महबूब और महिब का नमूना जो है मियाँ बीवी में रखा। क्या खुदा की कुदरत है, क्या क्या उसके करिश्मे हैं, काश के इंसान गौर करे और उसका शुक्र अदा करे अल्लाह ताला। ये जो मशीन है इंसान के जिस्म, यहाँ खाना डालो यहाँ से खून निकल गया, इधर से पेशाब निकल गया, इधर से पखाना निकल गया, इधर से जो है और जो जैसी चीज़ आ गई होगी इसकी, हुआ ये हुआ। लेकिन ये मशीन चूँकि ऑटोमेटिक चल रही है ना, पैसे खर्चा नहीं किए, मशीन सेटअप हमने नहीं, कभी इसका ओवरऑल हमने नहीं किया कभी नहीं किया, तो हमें इसका जो है पता नहीं है। अगर गौर करो तो पता चलेगा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, किसी मशीन चल रही नॉन स्टॉप मशीन है, सारी नॉन स्टॉप मशीन, सारी एक मशीन नहीं, बहुत सारी मशीनें चल रही हैं। एक हवा की मशीन है, एक एहसास की मशीन है, किसी के बाल को पकड़ लो तो उसे एहसास हो जाता है कि मेरे बाल किसी ने पकड़ा है। देखिए बाल के अंदर से एहसास की रगें इंसान के दिमाग तक हैं, इतना बड़ा सिस्टम है सेंसिटिवनेस का। तो ये तमाम सिस्टम अल्लाह ताला ने रखे हैं, काश के इंसान इस पर सोचे गौर करे शुक्र अदा करे, इसका नहीं करता। जन्म दिया तो थैंक यू बोलना सीख गया है, अंडा की गाड़ी भी नहीं सिल जाने के लिए तो थैंक यू है, और इतने तमाम चीज़ों पर कोई थैंक यू नहीं है, जुलम नहीं है? सोचो अल्लाह पूछेगा नहीं, जवाब देना नहीं पड़ेगा, सदा मगर तक नहीं होगी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक तरफ ईमान दिया है, एक तरफ आमाल की तफसील दिया है। ईमान इसलिए जरूरी है कि हर एक जानदार को अपने रब को पहचानना जरूरी है, बहुत अहम है ईमान। और आमाल भी इसलिए जरूरत है कि इंसान दुनिया में जो पैदा हुआ है बेशक एक दिन जरूर मरेगा, लेकिन मरने तक बहरहाल इसे जीना है, जीने पर मजबूर है इंसान। सुसाइड करने गया तो फिर वहाँ से कोई निकाल लेगा हॉस्पिटल में, फिर गायब हो जाएगा अगर उसकी मौत नहीं लिखी है तो इस तरीके से इसे जीना है। अब जिंदगी क्या है, एक शायर ने बहुत अच्छा कहा, जिंदगी क्या है, अनासिर में रहूगे तरतीब, चार अनासिर हैं मिट्टी पानी हवा, तो इनमें जो तरतीब रहूब में आती है, इन्हें बराबर पोर्शन से मिला तो बराबर तरीके से चीज बनाना। जिंदगी क्या है, अनासिर में रहूगे तरतीब, मौत क्या है, इन्हें अज्जा का परेशान होना, मिट्टी मिट्टी में गई पानी पानी में गया हवा हवा में गया गर्मी गर्मी में चली गई, होगा मौत है इंसान। तो इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है तो उसे मरने तक जीना है, जीना है, जीना किसे कहते हैं? जिंदगी की जरूरतों के पूरे करने का नाम जिंदगी है। अगर मुझसे कोई जरूरी डेफिनेशन क्या है तो मैं ये डेफिनेशन एक जुमले वाला दूंगा, जिंदगी की जो जरूरत है उनके पूरा करने का नाम जिंदगी है। मसलन सुबह इंसान उठा, हाजत से फारिग हुआ, तो हाजत से कैसे पानी होना चाहिए। फिर उठा, मुँह हाथ धोया तो मुँह कैसे धोना चाहिए, नहाया कैसे नहाना चाहिए, नाश्ता किया तो कैसे करना चाहिए, फिर नहीं कमाने गया तो कैसे कमाना चाहिए, और फिर शादी करना चाहे तो कैसे करना चाहिए, व्यापार करना चाहे तो कैसे करना चाहिए, अगर मना तो कैसे जहलापन करना चाहिए, तो बाहर जिंदगी हुकूमत करना चाहे तो कैसे चलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, बाहर ये तमाम चीज़ें अमल में दाखिल होती हैं। अब हर अमल का काम करने के कैसे रहेंगे, मसलन पानी पीना, एक छोटा अमल बयान करता है, अमल छोटा है ताकि वक्त कम लगे, इसलिए इन्हें पानी पीना एक अमल है। पानी पीने के कैसे रहेंगे, पानी को मैं कुत्ते की तरह हजार में निकाल सकता, पानी को भैंस की तरीके से जो है खींच के एक ही सांस में पी सकता, पानी को पाइप लगा के पी सकता, पानी को ऊपर से डाल के मैं पी सकता, और पानी को तीन सांस में भी पी सकता। अब इतने तरीके जो जिंदगी गुजारने के हैं, इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा जो इंसान के लिए फायदेमंद, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह फायदे मकसद से बात है, इंसान के लिए कौन सा तरीका है जो अच्छा फायदेमंद जिसमें तमाम लजीज मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे लजीज हैं दुनिया में, तो तमाम लजीज को सेट करके एक तरीके ज़िंदगी देना पड़ेगा। मसलन अच्छा ये सुन लीजिए, यानी ये लजीज जो मिलते हैं तो इसमें से जो पीने का जो तरीका इस्लाम में है, यानी तीन सांस में पियो, बैठ कर पियो, सर ठान कर पियो, बिस्मिल्लाह बोल कर पियो, बोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इतनी तफसील है सर, सुभान अल्लाह, अल्लाह के फरमान जाइए, हमारे नबी के फरमान जाइए, जूता पहनने का भी तरीका सिखाया, अजी थूकने का भी तरीका सिखाया कि हवा इधर से आ रही है इधर मत थूको तो उनके पीछे वापस आ जाएगा, थूको रास्ते में थूको नहीं, चलता चलता कोई देखेगा कराहत करेगा खुदल देगा ना जानकर, उसमें मिट्टी जो है पाँव से खिलल दो, उसके ऊपर मिट्टी जो है गुलादत को दबा दिया करती है मिट्टी के ऊपर, तो क्या क्या नहीं बताया है। तो हमारे पास ये कीमती चीज़ है जो पूरी दुनिया के इंसान की जरूरत की है, हमारे पास इन्हें अल्लाह ताला की और गैर की चीज़ों की तफसील हमारे पास है, जो पूरी दुनिया की इंसानियत की है, तमाम मर्दों की तमाम मौतों की जो है जरूरत की चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम दबा लेके नीचे बैठे हैं, ना अमल करते हैं ना दूसरों को देते, जुल्म है सब, इंतहाई जुल्म, इंसानियत पर जुल्म हमें देना चाहिए। तो इसीलिए जो है हमें तबलीग करने का हुक्म दिया गया, तमाम अम्बिया ने काम किया, जिंदगियों को लगाकर आए ही इसी काम के लिए थे, तमाम सहाबा कराम ने यह काम किया और तमाम औलिया कराम ने यह काम किया, वो हम तक आके दीन पहुँचाए, हम उन तक जाके दीन नहीं दिए, हमारे वालिदैन सऊदी से पैक होके नहीं आए थे, हमारे वालिदैन यहाँ उनके आने के बाद उन्होंने दीन कबूल किया, उसके बाद हम इस्लाम में ला सकते, और हमने कोई कुर्बानी नहीं दी मेरे दोस्त, बाप के पेट में मुसलमान के पैदा हुए तो मुसलमान बन गए, कोई कुर्बानी हमारी नहीं, जाओ नौ मुस्लिमों से पूछो कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी, यहाँ एक शख्स रहता है सिराज नाम है उसका, बाप ईसाई था, दुनिया का जो है माल है उसके पास, पता नहीं होना नहीं हुआ ना, मैं इसी लगा वो पसंद नहीं था, अब तक सीधा हो गया, अब वो नजीक आ गया है और उससे मोहब्बत करता है, साथ रख रहा है, लेकिन वो छोड़ दिया, भूखा भूखा मरता था, मैं जानता हूँ उसे, और मैंने कहीं मरता उसकी मदद की, मुझे बात कहता है, हाँ तो इस तरीके से वो जो है इस्लाम में जो दाखिल हुआ इंसान, इस्लाम में जो है वो चीज़ हमारे पास अमानत है, हमने दावत दीन की बात को हमारे जिंदगियों से निकाल लिया, अगर हमारे जिंदगियों से क्या निकाला, हमारे से दिमाग से भी निकल गया है, किसी के जहन में क्या मुस्लिम को दावत इस्लाम दो, जिंदगियों से निकल गया, गैरों से अपना लिया, बाकायदा दुनिया के एतबार से उनके ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, जो फाल हैं काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ना सदस्य के लिए बैठ जाना यह काम नहीं, ना करने से कुछ करना भला तो है, इसका इनकार मैं नहीं करता, लेकिन बना के बैठ जाना जो है काम नहीं, वो फाल हैं काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई है ऐसा, तो बहरहाल गैरों को दावत इस्लाम देना, ये सिलसिले में थोड़ा काम कर रहा था, इन्हें कॉलेज में जाता है अंग्रेजी में एम ए पी एच डी डबल पी एच डी के लोग रहते हैं उनको दावत देता, उसके ढंग अंदाज है उर्दू अदा सभी जगह की कभी हिकमत इवल मोहिंदत इतना हिकमत का लोज पहले अच्छी बात का लोज बात है, पर पता चला कि हिकमत ज़्यादा ज़रूरी है मोहिंदत हंसना से, हिकमत से तो वही दावत जो देता था इस्लाम का नाम नहीं लेता, अल्लाह का भी नाम नहीं लेता, कल लगाया दिया तो कल के लाल नहीं लेता, लेकिन बात दीन की करता था, लोगों को बड़ी पसंद आता और उनकी दीन को बुरा नहीं बोलता, हाँ खमियाँ हैं लेकिन बोलना, तारीफ करना, किसी की तारीफ करने से क्या तेजी जो है वजन होता है, पसीना निकलता है, पैसा खर्चा होता है। तारीफ करो किसी की, इंशाल्लाह तारीफ करने से सही होता है। तारीफ करो, एक बात छोटी मिली तो उसे बढ़ा करके थोड़ा पेश करो, क्या बढ़ा जाता है, तुम्हारा क्या चला जाता है। तो कोई मतलब बुराई की दावत नहीं देता, खुदा के समझने में फर्क है कि पैदा करने वाला कौन हो, इसकी तफसील क्या है, इसमें तो फर्क है। अरे आंखों से देखी चीज में भी फर्क हो जाता है, ये कपड़े का बहुत अच्छा है कहते हैं, ये कहीं कहता हूँ ये अच्छा नहीं है, ये फर्क हो गया। आन देखी चीज को जब फर्क हो जाता है तो जो आन से दिखती नहीं वो फर्क नहीं होता है। तो बहरहाल तो अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया, इसके अंदर अमल भी है, इसके अंदर जो है ईमान भी है, कई की बातों में फर्क है, पूरी दुनिया की जो है जरूरत की चीज़ है, तो उसे दूसरों तक पहुँचाना जरूरी है। इस सिलसिले में मैंने बहुत आसान कर दिया, बहुत सोचता रहा, अब पता नहीं अल्लाह ने क्या मेरे पर हल किया, बहुत सोचता रहा मसले का हल क्या है, महीना नहीं बक्सों सोचा, सोचते के बाद यह समझ में आएगा कि ये मलाहिब की तफसील बयान करो तो इतनी मोटी किताब बन जाती है, और मलाहिब की तफसील बोलो तो मुझी कहना मुश्किल है, कलर गिलास पड़ जाता है। तो ऐसा करो मंतिकी लॉजिकल पर्सन से बात करो, सिंपल और मुख्तसर सा जो है जगह पर जाती है, और जेरॉक्स साइज लो पेपर और प्लेन पेपर लो और काली इंक से जो है लिखो, ताकि जेरॉक्स बनाने में आसानी हो। तो दो सफ़ों में मैंने मसला हल कर दिया, दो रुपये और होलसेल करा तो एक रुपया हटा देने में जेरॉक्स होता है। करा तो आप एक शख्स को, आपको पढ़ना भी ना आता हो, किसी पढ़े लिखे के कागज दे दो, आपने एक को दावत के दिन का काम किया, कितना आसान हो गया मसला। मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में छपा छपा करके दे कर, तो इस तरीके से जो है दावत के दिन के काम को इतना आसान नहीं किया है। अगर आपके दिल में दिल दिमाग में बात आती है तो हैंडल मौजूद है, तो अब उसमें देखिए मिसाल के तौर से एक बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह गेट है। अब इसके दलाइल की जलम में हजरत इमाम गाजी ने 100 दलाइल साइन की, शैतान बस बनाने के बाया मौत के बस 100 दलाइल साइन की, शैतान ने 100 दलाइल को रद्द कर दिया। उस वक्त जो है आपने अपने मुर्शिद पाक को बताया, मुर्शिद पाक हाजिर हुए, फरमाया कह दे इससे कि मैं अल्लाह को बिला दलील मानता हूँ, कह दे अल्लाह को बिला दलील मानता हूँ। आप देखो ये जीत गए वहाँ गए। तो इसलिए ये हमने क्या किया, मसलन हमने एक मोटी बात कही, ये है कि कोई स्कूल ऐसी बताओ, क्योंकि मदरसे में बात करता था ना तो स्कूल की मिसाल दी, मैं कोई स्कूल ऐसी कॉलेज बताओ जहाँ दो प्रिंसिपल रहते हैं, कोई मुल्क ऐसा बताओ जहाँ दो बादशाह रहते हैं, कोई जमहूरी मुल्क ऐसा बताओ जहाँ दो सदर रहते हैं, कोई है नहीं है। जब नहीं है, जब किसी मुल्क के लिए किसी स्कूल के लिए आप एक से दो का जो है बड़ा होना मुनासिब नहीं समझते है भी नहीं वजूद में, तो फिर पूरी कायनात के लिए दो कुछ महसूस क्या हो गई, खत्म हो गई, तो ये दो जुमला में खत्म हो गई, तो ये है बिल्कुल चुपता है, बात सही है, अनपढ़ भी जो है समझ जाता है, बल्कि अनपढ़ दूसरों को पहुँचा सकता है, अगर मज़ाहिर के दलाइल दो तो रिपीट नहीं कर सकता, वो दूसरों को समझा नहीं सकता, क्योंकि आया पर कलमा तक सही मुसलमान नहीं करता, तो फिर क्या लगेगा आए तो मुझे समझाएगा, ये सूरत हाल। तो अलगरस यहाँ एक बात मैंने ख़त्म की, क्या ख़त्म की, यानी इंसान क्या है और अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया वो क्या है और करने का काम क्या है, यहाँ की एक बात ख़त्म। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूँ, वो है आज हम जो यहाँ जमा हुए वो सूफिया की मस्जिद है। सूफिया एक ऐसी हस्तियाँ हैं जिनसे हर एक को मोहब्बत होती है, गैर मुसलमान को मोहब्बत होती है, वो भी अदब करते हैं, वो भी अदब करते हैं, वो भी अपनी ज़रूरतें लेके आते हैं, वो भी हमारा जो है हमारी इज्जत करते हैं। मैं दरगाह शरीफ में रहता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, तफसीलात कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भरे मजमे में नहीं कही जा सकती, ऐसी भी कुछ बातें होती हैं। तो हम जो है इन्हें उनके बड़ों से मुलाकातें रहती हैं हमारी, बातचीत रहती है उनकी, तो क्या बताऊँ उनके क्या होता है, हाँ तो ऐसा जो है उनके पास होता है, तो ऐसे सूफिया है कराम है। आपको कोई बच्चे को आपके बच्चों में से किसी को सूफी करके पुकारते ही कभी आपने देखा हो तो क्यों पुकारते हैं, मुझे पैदा दिमाग तो दौड़ा दी, वो बच्चा कम बात करने वाला होता है, वो बच्चा नरम मिजाज होता है, वो बच्चा खाने पीने की तरफ जाने वाला झगड़ने वाला नहीं होता, ऐसा कोई बच्चा आपको दिखता है ये सूफी साहब हैं, ये सूफी साहब नहीं बोलते, आप सोचते लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है। तो सूफी एक ऐसी चीज़ है अल्लाह जिनकी तरफ सब बच्चे होते हैं, चोर भी आता है, डाकू भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, मर्डरर भी आता है, बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते हैं और बड़ी बड़ी औरतें भी आती हैं, जज भी आते हैं। अभी पंद्रह दिन की बात है, एक जज आई थी, औरत आई थी जज, बहुत सारी लोग एमएससी में गोल्ड मेडल दी है, मुझसे बात की, सबको बाहर करा दिया, मुझे और वो थी बेटी को साथ दिखाई, बेटी को कुछ मसला था, सबको बाहर कर दिया। तो हम बैठ के बात करते हैं, तो आगे कहता है औदिया क्रम ऐसी चीज है। तो अब मैं थोड़ा सा वक्त इन औदिया क्रम के बारे में थोड़ी बात अर्ज कर लूँ। तो कोई बात जो है सनद के लिए या तो कलाम पाक से बोलना पड़ता है या हदीस पाक से बोलना, जब भी दिन में सनद हो जाए उसकी, वरना ख्याल की बात जो है उसे तमाम मत कबूल करना मुश्किल होता है। इधर से कोई कबूल करने बात दूसरी है, लेकिन सबका कबूल करना मुश्किल होता है। एक मरतबा इसलिए मैं हदीस पाक अर्ज करता हूँ कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद आके बैठे, आके बैठने के बाद उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लम इस्लाम क्या है, सवाल किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान लाना और कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये इस्लाम, ये इस्लाम, यानी आमाल को गिनवाया। और आमाल नमाज बगैर कलमे के नहीं होती, ईमान का जिक्र किया, कलमे का जिक्र किया और आमाल बताया, खाली इतना पूछता आप नहीं, उसकी तफसील बहुत है, बुनियादी बातें छोटी मोटी मोटी बातें मैं यहाँ कर। फिर उन्होंने कहा सब दस्ता या रसूलल्लाह, आपने सब फरमाया। फिर उसके बाद उसने दूसरा सवाल ले लिया, या रसूलल्लाह सल्लम ईमान क्या है, दूसरा सवाल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आमंतु बिल्लाहि व बिमलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास। ईमान की तफसील, एक बात की तफसील है, फरिश्ते कहते हैं, किताबें लिखती हैं, हमने नहीं देखा किताब उतरते हैं किसी नबी पर, हम नहीं थे, लेकिन हमारे नबी ने कहा हमने मान लिया, ऐसा माना आंख और की चीज को हम डाउट कर सकते हैं, नबी की बात में कोई डाउट नहीं है हमारा, कोई डाउट नहीं है। तो जब ये जवाब दिया तो उन्होंने कहा सतख तया रसूलल्लाह। फिर उन्होंने पूछा एहसान क्या, एहसान क्या। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज ऐसी करो जैसे कि तुम खुदा को देखते, जैसे कि तुम खुदा को देखते। अब अगर ऐसा ना कर सको क्यों, इसलिए कि चीज़ की कोई निस्बत छोटी है तो इंसान वो चीज़ को अंदाज करके वो बड़ी चीज़ का तसव्वुर कर सकता है। अब कोई चीज़ है ही नहीं उसकी निस्बत, तो कैसा तसव्वुर करें, मुश्किल। आप बिल्ली को देखें तो शेर का तसव्वुर कर सकते हैं, बाघ का तसव्वुर कर सकते हैं, हाँ आप सांप को देखें तो अजय का तसव्वुर कर सकते हैं, हाँ। तो आप कुछ भी ना देखें तो आपसे कहा जाए कि फलां चीज़ का तसव्वुर करो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख की जो चीज़ें हैं उनकी निशानियाँ दुनिया में रखी हैं ताकि लोग उसका एहसास करके उसका तसव्वुर कर सकें, उसका तसव्वुर कर सकें। ये तो इस वास्ते जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी चीज़ें दिला, तो कहा अगर तुम ऐसा ना कर सको तो फिर अल्लाह ताला ने आयत में किया क्या, फ़ैनम तकुम तरा फ़ैन अल्लाह यरा, यानी तुम ऐसा कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह के सामने तुम खड़े हो, अल्लाह तुम्हें देख। ये बड़ा आसान है उसके मुकाबले। इस वास्ते नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आया ऐसे कागज पड़ा कि ना दुकान में रख पाया, दिन में डाल लिया, कान डाल लिया, ख्याल आया। अब ख्याल आते ही फौरन जहन में लाओ अल्लाह देख रहा है, और फौरन आपने झटक किया वो ख्याल, और फिर जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गए, काम हो गया आपका, आपका काम हो गया। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो फिर जो है उस शख्स ने कहा सत्ता तैयार रखूँगा, आपने सही फरमाया। चलिए इसके बाद सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन शख्स पाया था, इन्हें एक शख्स का सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है, जब नहीं मालूम था तो सवाल किया, जब सवाल किया तो तस्दीक कैसे कर सकता है, सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है, ये कौन शख्स। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हारे भाई जिब्रील हैं, ये तुम्हारे भाई जिब्रील थे जो तुम्हें दीन समझाने आए थे, वो समझते नहीं वो तो जानते हैं, तुम्हें दीन समझाने के लिए आए थे, तुम्हें दीन समझाने के लिए आए थे, तुम्हारे भाई जिब्रील थे। तो पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन जिब्रील फरमाया, एक अमल का डिवीजन, एक ईमान का डिवीजन फरमाया और एक का डिवीजन फरमाया और एहसान का एक डिवीजन फरमाया। एहसान से हम ये एक डिक्शनरी एक लफ्ज के कई माने देती है, मसलन खत्म का माना हमने जो लिया है और एंड फिनिश उसके बाद कुछ नहीं, एक माना खत्म है का ये, एक माना खत्म का ये है डिक्शनरी देती है। अटेस्टमेंट पहले चीज की तस्दीक करना ये देती है, तो उसमें जो खत्म नबूवत के मानने वाले दूसरे हजरात जमी उन्होंने क्या माना लिया, वो माना लिया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे पहले तमाम नबियों की तस्दीक करने के लिए आए थे, कि आदम अलैहिस्सलाम बेशक एक नबी थे, दाऊद अलैहिस्सलाम बेशक नबी, ईसा अलैहिस्सलाम बेशक नबी, मूसा अलैहिस्सलाम बेशक, सबकी तस्दीक आपने फरमाई, आपने उनके नबूवत पर अटेस्टमेंट किया, इन्हें उस पर सील लगाई, महर लगाई, तो इसका माना ये नहीं हुआ कि इसके बाद नबूवत खत्म हो गई, नबी कितने भी आ सकते हैं और मैं भी एक नबी हूँ, नऊज बिल्लाह, उसने बोला मोहम्मद कादियानी का। तो इसी तरीके से एक लफ्ज़ के कई माने हो सकते हैं। तो यहाँ जो लफ्ज़ है एहसान, आमतौर से हमारा जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है वो ये है कि हम किसी पर कुछ एहसान कर देते हैं तब उसे एहसान समझते हैं। यहाँ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने तशरीह की है, हमने तशरीह नहीं की, तो उन्होंने जो तशरीह की है वो ये है कि नमाज के अंदर ऐसी नमाज पढ़ो कि तुम जो है इन्हें तुम्हें पता भी नहीं चले, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज थी, इन्हें एक मरतबा जब अली थे जंग में तो उस वक्त एक चीर लग गया पाँव में, चीर कैसा होता है सामने ऐसा होता है, यहाँ नीचे आते आते वो लोहा मोटा होता है, ये चीर होता है, तो चीर चुप गए आधा गया, आज के ज़माने में जैसा वेल्डिंग नहीं थी, वो इन्हें इंसान को जो है वो बेहिस होने का इंजेक्शन नहीं था वो ज़माने में, जब चीज के यूँ खींचते थे चीर मारते थे, इधर से खींचते थे चीर मारते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात लेके गए सहाबा किराम कि हज़रत अली का ये हाल है क्या करें, मसले का हल क्या, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया जब अली नमाज में हो तो उस वक्त तीर निकाल, नमाज में हो तो उस वक्त तीर निकाल लेना, अब उस वक्त जब तीर निकाल तो जबरदस्त चीज खींच करके निकाल दे ताकत के जोर से, जाहिर बात है वो जमाने के लोगों में ताकत ज्यादा थी, खून ज्यादा था, जब तीर निकाला गया तो खून के फवारे निकल गए, और हज़रत अली नमाज में कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं हज़रत अली नमाज कुछ पता, जब नमाज खत्म ही सलाम फेरा पूछा ये खून क्या है, ये खून क्या है, तो सहाबा किराम ने किया वो आपका चीर निकाल लिया गया इसलिए ये खून निकाल लिया गया, निकाल लिया गया अब पता चला उनको कि चीर निकाल लिया गया, ये एहसान, ये एहसान। अब उसे लोग हम मुख्तलिफ नामों से भी याद करते हैं, जैसे बाद हजरात सूफी हजरात बोलते हैं, बाद हजरात इरफान वाले मारिफत वाले बोलते हैं, मारिफत मारिफत वाले बोलते हैं, बात करते हैं रूहानियत वाले बोलते हैं, बाद औलिया अल्लाह बोलते हैं, जो भी नाम बोलो, अब एक इंसान का कई नाम होते हैं, गौरत है, अब किसी ने कहा बच्चे ने आगे कहा अम्मा, भाई ने कहा आपा, हाँ बाप ने कहा बेटी, ये ही है ना, नाम मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अंदाज से देखे गए तो नाम मुख्तलिफ है, चीज़ एक ही है, तो इसी तरीके से इन्हें बात एक ही है, तो इसमें जो है इन्हें ये जो मारिफत है, मारिफत का लफ्ज़ मारिफत के माने ही पहचानना, मारिफत के माने हैं पहचानना, खैर ये बात पूरी करता हूँ फिर इसको बात करें, यानी वो जो मैं कह रहा था वो ये कि जीन समझाने आए थे, अब सहाबा किराम को दीन समझ में आया, दीन के कितने हिस्से हैं समझ में आया इसको, अब इसे बात साबित हो गई कि रूहानियत का दर्जा भी है ईमान के आगे का, ईमान ही जो है वह एक मुतल्लिक है लेकिन ऊपर का दर्जा है आगे का दर्जा है। अब ठीक है सवाल होता है ये क्या सब पर कंपल्सरी है क्या है, ये बात जब हदीसे पाक में आ गया तो लाजिम हुआ कि नहीं हुआ, लाजिम हुआ, लेकिन बात ऐसी है कि लोग इसकी तरफ तवज्जो पहले नमाज ही नहीं पढ़ते, रोज़ा ही नहीं रखते, यही नहीं होगा तो उसका वो तो मुशक्कत की बात है, आगे का मसला है वो कौन जाएगा, अभी मिडिल स्कूल हाई स्कूल नहीं पढ़ा तो कॉलेज में दाखिला कैसे मिल सकता है मेरे लिए, वो तो आगे की बात है, तो इस वास्ते जो है अच्छा ये खौल हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौल हुआ। अब मैं एक खेल समझाऊँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खेल, इन्हें एक मरतबा का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में बंद थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो गई कमरा बंद था दस्तक की, आपने अंदर से आवाज़ आई कौन, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा मैं आयशा, फरमाया कौन आयशा, तो फरमाया अबू बकर की बेटी आयशा, फरमाया कौन अबू बकर, فرمایا کہ محمد کی بیوی عائشہ ہے. پھر فرمایا کون محمد؟ ظاہر بات ہے عورت کو ناگواری ہوگی کہ مرد اس قسم سے سوال کرتا رہے, عورت کو ناگواری ہوگی ظاہر بات ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا, سیدھا آ گئی اپنے کام میں لگ گئی. تھوڑا وقت گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد کمرے سے تشریف لائے, اور آنے کے بعد دنیا ہے, کھانا پانی بات چیت سب ہے. جب موڈ اچھا تھا بات چیت کر رہے تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا میں آپ کی کیا لگتی ہوں, سوال کیا میں آپ کی کیا لگتی ہوں, میں کون ہوں؟ تو میں عائشہ ہوں میری بیوی. اب بول گئے جب میں دستر دی تھی تو اس وقت پوچھا کون عائشہ, پھر کہا ابو بکر کی بیوی تو کون ابو بکر, پھر کہا محمد کی بیوی تو کون محمد. بیٹا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ عائشہ بات سمجھو, یعنی میں میرا حال بعد ایسا ہوتا ہے بعد وقت کہ میں تمہارے ساتھ کھاتا رہتا ہوں, پیتا رہتا ہوں, باتیں کرتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, کھیلتا رہتا ہوں. ایک وقت میرا وہ ہوتا ہے, ایک وقت میرا وہ ہوتا ہے جب مخلص فرشتے بڑے بڑے فرشتے میرے نزدیک نہیں آ سکتے, دو بڑے بڑے. ایک وقت میرا وہ ہوتا ہے, اور پھر فرمایا ایک وقت میرا وہ ہوتا ہے جب میں مجھ میں نہیں رہتا, میں اللہ کی ذات میں جم رہتا ہوں, میں نہیں رہتا اللہ کی ذات میں. اور جب انہوں نے جب پکارا اس وقت میرا وہ حال تھا. اس لیے اچھا جواب دیا. اس لیے شاعر نے حیدرآباد کے ہی نظر بڑا اچھا شعر کہا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, جب تو نہیں ہوتا ہے تو میں ہوتا ہوں, جب میں نہیں ہوتا ہوں تو تو ہوتا ہے, ممکن نہیں وجود تو بھی نہیں. یہ اب جو ماما آپ پہلے کہہ رہا تھا اس سلسلے میں اس کو کہ ایک ہے جاننا, ایک ہے پہچاننا. جاننا کسے کہتے ہیں؟ میں پہلی مرتبہ آیا حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے مجھے جانا اور میں نے حضرت کو جانا, اسے جاننا کہتے ہیں. پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ جب یہ دوبارہ مجھے ملیں گے تو میں انہیں پہچان جاؤں گا اور یہ مجھے پہچان جائیں گے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ازل میں جانا, اب دنیا میں آ کے پہچاننا. ہم جو ایمان لائیں گے وہ خود پر ایمان لائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم ایمان لائے, امنا صدق. لیکن پہچاننا کیا ہے؟ اب انہیں ان کو اس کی تفصیل کے پیچھے پڑھنا. اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے اس بات سے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو ان میں سے 5 اکابر پیغمبر ہیں, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی بھی ہیں, یہ 5 اکابر, اور داؤد علیہ السلام والی بن ہیں, داؤد علیہ السلام. ہاں تو یہ 5 پیغمبر اکابر پیغمبر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اکابر پیغمبر, ایک تو پیغمبر پھر اکابر پیغمبر ہوتے ہیں, انہوں نے خدا کی دیدار کا مطالبہ کیا. آپ کیا کہیں گے انہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے غلط سوال کیا, نبی غلط سوال کرتا ہے کیا؟ وہ بھی اکابر نبی غلط سوال کریں گے, نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکنے کا سوال کیوں کیا, غلط کا سوال کیوں کیا؟ بات پیدا ہوتی ہے, دلیل پیدا ہوتی ہے. جو صحیح تھا سوال کیا, مگر تاب لانا ایک الگ چیز ہے, تاب لانا ہوش میں رہنا ایک الگ چیز ہے. ہاں اسی لیے جب انل حق بولنے لگے, کون انل حق جب بولے تو اس وقت جو ہے یعنی مولانا روم نے اپنے مصنوعی میں ارشاد فرمایا تھا انل حق بس مگر ایک لفظ گستاخانہ تھا, بات تو صحیح تھی اس وقت پوزیشن کچھ ویسا ہی تھا, لیکن ایک لفظ گستاخانہ تھا. جیسے ماں کو کوئی شخص کہے امی جان, ماں کو بیٹا کہے امی جان تو ماں کہے گی کہ کیوں بیٹا کہہ رہا ہے, اور ماں کو امی جان کہنے کے بجائے یہ کہے کہ میرے بابا جی جوڑو گھر پر ایک لات مارے گی, کیونکہ غلط کہا کیا بیٹا نے, کیا باپ کی ضروری ہے کہ باپ کی ضرورت ضرور ہے, مگر بولنے کا طریقہ بڑے ہوا ہے, ڈھنگ کا طریقہ نہیں تھا, انل حق مگر ایک لفظ گستا تھا. تو عورت مرد کی جو کمرے کے اندر کی بات ہے نا وہ باہر بولا نہیں کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا گدھے گرا گدھی راستے میں جو ہے مل رہا ہے, کہ ایسا منع فرمایا اس. تو اس طریقے سے جو چیز بند کرنے کی ہے آج بڑی مشکل ہمارے شوقی حضرات کی یہ ہے کہ اسے بتا کر بیان کرتے ہیں, اسے اپنے مریضوں کی حد تک لگا کر अब उनको भी ताकीद करें कि दूसरों के सामने जाए, इसका तस्करा ना करें। अब वो जाके काम से बोल देते हैं, कभी कभी किसी को अटकाने के लिए बोल देते हैं, कभी किसी पर अपना रोक जमाने के लिए बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, रास की बात को रास में रखना चाहिए, इसी में जो है फायदा है। तो इस बात से एक जानना पहचानना, फिर जब अल्लाह ताला हमारे शहरक से करीब है, ये बात सनत की है, तो शहरक से करीब वाले को क्या देखने का इरादा नहीं है, क्या मिलने का इरादा नहीं है? इंसान जिससे बात करता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे, तो देखने की खातिर।